उसके बाद जो है ना मैनेजमेंट ऑफ स्कीम्स की फीस डिस्कस करते हैं कि अब ये तो हम लोग बोल बोल के ना इतनी प्रैक्टिस हमें हो गई है कि इसमें हमारे पास दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, एक टॉपिकल है और एक ओरल है। टॉपिकल जो ट्रीटमेंट होती है ना उसकी अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं और ओरल के अपने हैं। तो टॉपिकल ट्रीटमेंट जो भी इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है ना उसमें टॉप में हम हमेशा परमेथ्रिन ही रखेंगे, जिसमें हमारे पास 5% क्रीम और 1% लोशन फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो जो परमेथ्रिन है ये तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन है, इफ़ेक्टिव है, ईजिली अवेलेबल है। ओरल ट्रीटमेंट जो है ना वो ये होती है कि क्योंकि सिंगल डोज में हम देते हैं उसको 7 डेज़ के बाद हमने रिपीट करना होता है, तो उसमें जो है ना अगर कॉम्प्लाइंस आप देख रहे हो कि पेशेंट मेंटेन नहीं कर सकता टू द टॉपिकल लोशन ना, तो फिर इसमें हम ओरल ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन ओरल ट्रीटमेंट का ये होता है उसमें एक एज लिमिटेशन है, वेट लिमिटेशन है, प्रेगनेंट लेडीज़ को नहीं दे सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों को नहीं दे सकते और एक्सपेंसिव है। तो इसी वजह से वी हैव टू सी द पेशेंट, उसकी कंडीशन के मुताबिक वी हैव टू डिसाइड। लेकिन फिर भी हमारे पास हमेशा अगर कोई हमसे पूछे कि फर्स्ट लाइन आप क्या देना चाहेंगे तो वो टॉपिकल ट्रीटमेंट ही होगी। तो टॉपिकल ट्रीटमेंट में हमने पेशेंट को एडवाइस करना होता है, उसको कम्प्लीटली हमने समझाना होता है कि आपने जो है ना कौन सी बॉडी एरियाज़ के ऊपर अप्लाई करना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको हेड टू टो अप्लाई करना है, अवॉइडिंग द माउथ एंड द आई एरिया। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर यूजुअली हेड और स्कैल्प का इन्फेक्शन होता ही नहीं है, तो इसी वजह से कहते हैं कि नेक से नीचे नीचे पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है, स्पेशली बरोज में, अंडर द नेल्स, ग्रॉइंस में, फीमेल के अंदर अंडर द ब्रेस्ट एरिया को अच्छी तरह अप्लाई करना है जो भी परमेथ्रिन लोशन है, और उसको फिर 1 वीक के बाद दोबारा रिपीट करना है। जितने भी क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट्स होंगे सब यूज़ करेंगे, और जब तक ये इफेक्टिवली ट्रीट नहीं हो जाते दे शुड अवॉइड क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमने लाजमी स्कीबीज वाले पेशेंट को बतानी होती है, इन द वर्बली फॉर्म एज वेल एज़ इन द रिटन फॉर्म। तो ये हमने ट्रीटमेंट के साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो अगर हम बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी देते हैं ना तो उसकी कोई मतलब इफेक्टिवनेस नहीं होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद टॉपिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि वी कैन गिव परमेथ्रिन, बेंजाइल बेंजोएट, लिंडीन, एसडी पैलेथ्रीन, क्रोटमेटॉन, प्रेसिपिटेटेड सल्फर। इनकी अपनी जो है ना प्रिपरेशन स्ट्रेंथ्स हैं। जैसे परमेथ्रिन जो होता है ना वो 5% क्रीम और 1% लोशन फॉर्म में आता है, जो लिंडेन है वो 1% लोशन और क्रीम फॉर्म में आता है, बेंजोइल बेंजोएट जो है ना वो 25% ऑइंटमेंट फॉर्म में आता है, जो एसडी पैलेथ्रीन है इट इज़ अ स्प्रे बेसिकली जो कि इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता है और ये आता है इन द फॉर्म ऑफ एन एरोसोल 0.6% में। क्रोटमेटॉन जो है ना वो 10% ऑइंटमेंट में आता है। प्रेसिपिटेटेड सल्फर जो है वो 2 to 10% प्रेसिपिटेटेड इन द पेट्रोलियम बेस फॉर्म में। तो ये टॉपिकल इसकी डोजेजेस हैं। ट्रीटमेंट रिजीम इसमें ये है कि जो परमेथ्रिन है टॉपिकली जो हम अप्लाई करने के देते हैं इट शुड बी अप्लाइड फॉर 8 to 12 आवर्स एंड देन आफ्टर दैट इट शुड बी रिंस्ड ऑफ और वॉश ऑफ प्रॉपरली। जब तक कि ये जो 8 to 12 आवर्स कंप्लीट नहीं होते हैं वी हैव टू टेल द पेशेंट कि जो भी बॉडी एरियाज अफेक्टेड हैं उनके ऊपर अप्लाई करना है, एंड इवन इफ दे वॉश देयर हैंड्स और दे वॉश दैट एरिया ऑफ द बॉडी इट हैज़ टू बी रीअप्लाइड। फिर उसके बाद जो लिंडेन है ना इट शुड बी अप्लाइड ओनली फॉर 6 आवर्स एंड आफ्टर दैट इट शुड बी वॉश्ड ऑफ। बेंजॉइल बेंजोएट, क्रोटरमेटॉन और प्रेसिपिटेटेड सल्फर, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अप्लाई करना है फॉर 24 आवर्स। ठीक है, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगे और जो बच्चे होंगे उनके में हमने मतलब बेंजॉइल बेंजोएट अगर हम दे रहे हैं तो उसको हम लेसर ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करेंगे, लाइक 12 आवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि जो एसडीपैलेट्रिन है उसको हमने 12 आवर्स के लिए अप्लाई करना है। फिर इनके अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स और इनके अपने कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। जैसे कि जो लिंडेन है ना वो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो मसल स्पैज़म, डिजीनेस और सीजर्स प्रोड्यूस कर सकता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। तो इसी वजह से लिंडेन तो हमें बिल्कुल ही प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर और इन्फेंट्स में नहीं देना और उन लोगों में भी नहीं देना जिनके अंदर सीजर डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके अलावा जो बेंजाइल परोक्साइड है उसको भी प्रेग्नेंट वुमेन में और इन्फेंट्स वगैरह के अंदर नहीं देना, अगर देना भी है तो सिर्फ 12 आवर्स एप्लीकेशन के लिए देना है क्योंकि ये ना सीवियर स्किन इरिटेशन कॉज कर सकती है। फिर जो एसडी पैलेथ्रीन है क्योंकि एक एरोसोल फॉर्म में है तो इसी वजह से हम इसको एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर नहीं देते हैं। बाकी इसकी जो डिसएडवांटेजेस है इतनी कोई ख़ास नहीं है। जैसे परमेथ्रिन है ना, उसका जो है ना माइल्ड इचिंग और स्टिंगिंग सेंसेशंस हो सकती है। जो इम्पॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट है वो सिर्फ लिंडेन का ही है कि वो क्रैम्स और डिजीनेस और सीजर्स कॉज कर सकता है। इसी वजह से हम इसको बच्चों में नहीं देंगे और वो पेशेंट जो जिनमें सीजर्स होते हैं उनमें हम नहीं देंगे। बाकी जितने भी टॉपिकल प्रिपरेशन है दे आर क्वाइट वेल टॉलरेटेड एंड दे आर वेरी इफेक्टिव। तो उसके बाद जो है हमारे पास अच्छा है आइवरमेक्टिन, दैट इज़ ओरल ट्रीटमेंट विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। डोज इसकी होगी 200 माइक्रोग्राम्स पर किलोग्राम्स विच इज़ रिपीटेड ऑन द डे 7 और 14, क्योंकि इनका कोई ओविसिडल इफेक्ट नहीं होता, तो इस वजह से वी हैव टू रिपीटेड ऑन डे 7 और 14 फॉर द इफेक्टिव इरेडिकेशन। इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि हम इसको बच्चों में लेस दैन 2 ईयर्स और डोज हैविंग अ वेट ऑफ लेस दैन 15 kg में इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। गुड पेशेंट कॉम्प्लाइंस अगर हम चाहते हैं तो उसमें हम आइवरमेक्टिन देंगे, और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव है।